इसके बाद वो रब जिसके दामने रहमत में बचेंगे, जिससे वाकई फिर शैतान हमसे पीछे होगा, वो कौन सी ज़ात है? फरमाए रब्बुकुमुल लज़ी युस्जी लकुमुल फुल्क फिल बहर, तुम्हारा हकीकी रब तो वो है जो समंदर में तुम्हारे लिए कश्तियाँ चलाता है। यानी अल्लाह की पनाह लेनी है तो देखो कि वो कितने बड़े बड़े काम करता है, जो समंदर में तुम्हारी कश्ती चलाता है ताकि तुम इसका फजल तलाश करो। यानी समंदरों से भी रिस्क हासिल किया जाता है, मछलियाँ गूंगे वगैरह पकड़े जाते हैं, उसकी तरफ इशारा है। हकीकत यह है कि वो तुम्हारे हाल पर नहायत मेहरबान है। जब समंदर में तुम पर मुसीबत आती है तो एक उसके सिवा सब को भूल जाते हैं, सच के नहीं? मुश्किल में तो कोई नहीं फिर पुकारता किसी बुजुर्ग को, किसी बाबे को, उस वक्त अल्लाह ही याद आता है। अफसोस की बात है, आज का मुसलमान छोटी छोटी चीज़ें अल्लाह से मांगता है और बड़ी चीज़ों में बुजुर्गों के पास पहुँच जाता है। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा दे। इसीलिए फरमाया, दूसरे जिन जिन को तुम पुकारा करते हो वो सब गुम हो जाते हैं, मगर जब वो तुमको बचाकर खुशकी पर पहुंचा देता है तो तुम इससे मुंह मोड़ जाते हो। इंसान वाकई बड़ा नाशुक्रा है। अच्छा, तो क्या तुम इस बात से बिल्कुल बेखौफ हो गए हो कि अल्लाह कभी खुशकी पर ही तुमको ज़मीन में धंसा दे, या तुम पर पथराव करने वाली आंधी भेज दे और तुम इससे बचाने वाला कोई हिमायती ना पाओ? यानी समंदरों में जाकर मस्तियाँ ना करो, तुम्हें अभी अल्लाह की ज़रूरत है। वहाँ जाकर अगर अल्लाह ने पकड़ लिया तो किसको बुलाओगे और कौन होगा जो उस वक्त तुम्हारी मदद करेगा? क्या तुम्हें इसका कोई अंदेशा नहीं कि अल्लाह फिर किसी वक्त समंदर में तुमको ले जाए और तुम्हारी नाशुक्री के बदले तुम पर सख्त तूफानी हवा भेजकर तुमको गर्क कर दे और तुमको ऐसा कोई ना मिले जो इससे तुम्हारे इस अंजाम की पूछगिछ करे? देखिए, टाइटैनिक डूबा था ना, कोई बचा सका? इतने साल बाद अल्लाह ने निकाल के दिखा दिया, ये अल्लाह बता रहा है। आपको हैरत होगी कि समंदरों को भी नहीं लोगों ने छोड़ा, उसको भी गुनाहों से आलूदा कर दिया। कभी देखा करें जो क्रूज़ जाते हैं और जो समंदर के अंदर जुबे खाने और शराब खाने और जो गंदगी और बेहूदगी होती है। एक दफ़ा मौका मिला था, सारी रात गम से गुजर गई कि अल्लाह आज मर गए तो हमारे साथ भी ये हाल होगा। तेरा गज़ब आ गया, तेरा गुस्सा आ गया, इंसान को चैन नहीं आता। अब तो चांद पे भी जाके बुराइयाँ करना चाहेगा। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा दे। फरमाया, ये तो हमारी इनायत है कि हमने बनी आदम को बुजुर्गी दी और इनको खुशकी और तरी में सवारियाँ अता कीं और इनको पाकीज़ा चीज़ों से रिस्क दिया और अपनी बहुत सी मखलूकात पर नुमाया फौकियत बख्शी। इंसान को इज्जत दी गई, उसका ख्याल किया जा रहा है। फिर ख्याल करो उस दिन का जबकि हम हर गिरोह इंसानी को इसके इमाम के साथ लेकर आएंगे। ये कौन सा इमाम है? पेशवा, उसका नाम है अमाल। उस वक्त जिन लोगों को इनका नाम अमाल दाएँ हाथ में दिया जाएगा वो अपना कारनामा पढ़ेंगे और इन पर ज़रा बराबर जुल्म ना होगा। और जो इस दुनिया में अंधा बनकर रहा वो आखिरत में भी अंधा ही रहेगा, बल्कि रास्ता पाने में अंधे से भी ज़्यादा नाकाम। दुआ कर लीजिए, अल्लाह ताला हम सबको बचा दे। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों ने तो इस कोशिश में कोई कसर नहीं उठा रखी कि आपको फितने में डालकर इस वही से फेर दें जो हमने आपकी तरफ भेजी है, ताकि आप हमारे नाम पर अपनी तरफ से कोई बात खड़ो। मक्का वालों की साजिशों का इशारा है। तुम ऐसा करते वो ज़रूर तुम्हें अपना दोस्त बना लेते और बईद नहीं था कि अगर हम तुम्हें मजबूत ना रखते तो तुम इनकी तरफ झुक जाते, चाहे थोड़ा सा ही झुकना। अल्लाह के नबी पे भी पीयर प्रेशर था, कुरान को बदलो, चेंज करो इसको। अल्लाह कह रहे नबी, अगर आपको हम ना थामते तो आप ना कर आप भी ना थम पाते। आज मेरे आपके लिए क्या अमल है? सारी दुनिया भी चीख चीख के आपको उन बातों के करने की खूबियां और फ़ायदे बयान करें ना जिससे अल्लाह ताला ने रोका है, तो उसको नहीं लेना, इसलिए कि मेरे मालिक का फ़ैसला सच्चा है। अल्लाह अकबर। और ये लोग इस बात पर भी तुले हुए हैं कि तुम्हारे कदम इस सरजमीन से उखाड़ दें या हिजरत की राहें हमवार हो रही हैं, आपके ख़िलाफ़ हो गए, कहने लगे ये नहीं मानेंगे, इनको निकाल दो यहाँ से और तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल बाहर करें, यहाँ से निकाल बाहर करें। लेकिन अगर वो ऐसा करेंगे तो तुम्हारे बाद ये खुद जहाँ कुछ ज़्यादा देर ना ठहर सकेंगे, ये नहीं रह सकेंगे। और यही हुआ, इधर मक्का से अल्लाह के नबी निकले, इन पर भी अल्लाह की पकड़ आ गई। सुन्नत मन कद अरसलना क़ब्ला कमेर रसुलिना, ये हमारा मुस्तकिल तरीक़ेकार है जो इन रसूलों के मामले में हमने बरता जिन्हें तुमसे पहले हमने भेजा था, और हमारे तरीक़ेकार में कोई तब्दीली तुम ना पाओगे। करो क्या? ये नमाजों के इशारे हैं। देखिए, पूरे कुरान में 5 नमाजें अपने असल वक्त के साथ कब पढ़नी है इसका जिक्र नहीं है। ये चीज़ भी हमें हदीस से मिलती है, लेकिन इस आयत में आप देखिएगा कि 5 नमाजों के इशारे मौजूद हैं। अकीमिस सलात लिदुलू की शम्स इला गसकिल लैल, नमाज कायम करो जवाले आफ्ताब से रात के अंधेरे तक, और फजर के कुरान को भी लाजिम करो। फजर के वक्त कुरान पढ़ना बहुत फजीलत वाला है, फरिश्ते सुनते हैं, क्योंकि इन्ना कुरान अल फजरी का न मशहूदा, کیونکہ فجر کا قرآن پیش کیا جاتا ہے، کیا کریں؟ فجر کی نماز میں طویل قیام کریں، ہماری وہ سب سے چھوٹی ہوتی ہے، آنکھیں بھی نہ کھل جائیں، نیند اڑ جائے گی۔ بعض تو آنکھیں بند کر کے وضو کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں آنکھوں میں پانی چلا گیا، وہ دیکھے وادیاں کریے، ہاں آج کرے گی تو اس کا ذرا چیک کریے گا، ہاں؟ وہ کہتے ہیں نہیں پھر نیند کھل گئی تو پھر سویا نہیں جاتا، ہاں؟ اللہ اکبر۔ پھر اس طرح آپ دیکھیں کہ نماز فجر کے بعد تھوڑا سا قرآن پڑھنے کے، فجر کی نماز کے بعد تھوڑے سے قرآن کی عادت ڈالیں۔ آج کل تو بہت آسان ہے، فجر سے پہلے اٹھے ہوتے ہیں تو عام دنوں میں تو فجر پہ بھی اٹھ سکتے ہیں، تو کوشش کیجئے کہ لمبی سے لمبی تلاوت ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ ایک دفعہ من مارنے کی دیر ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود بھی آسان کر دے گا۔ دوسری چیز جس کی نیت کرنی ہے انشاءاللہ ہم نے، وہ کیا ہے؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلًا، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ آپ کے لیے نفل ہے، یعنی ایکسٹرا ہے، یہ آپ کے لیے دوسروں سے زیادہ نیکی ہے، جو دوسروں پہ تو فرض نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد بھی فرض تھی، اسی کا تذکرہ اس میں فرمایا، یہ آپ کے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ خاص طور پہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ اب یہاں سے سورت کا تتمہ شروع ہو رہا ہے، حالانکہ آگے تھوڑی آیتیں اور چلیں گی، لیکن سمجھ لیجئے کہ ہجرت ہونے والی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا تھا، مدینہ میں اسلام کو نافذ کرنا تھا۔ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب قرآن کو نافذ کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے بہت سارے ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں، اسی لیے اب آپ کو دعاؤں پہ سکھایا جا رہا ہے کہ اب آپ کو ریسورسز چاہیے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور کہہ دیجئے اے میرے رب مجھ کو تو جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے نکال سچائی کے ساتھ نکال۔ بڑی پیاری دعا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، جہاں داخل ہوں، اس ہال میں بھی آتے ہیں تو پڑھ کے آئیں، ادھر سے بھی نکلتے ہیں تو پڑھ کے نکلیں۔ اور وَجَلِّ مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ دعا کا نتیجہ کیا بنا دیکھیے گا، اس پہ بڑی پیاری بات ہے، بَقُلْ جَعَلَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ ابھی تو جان بچا کے مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ باطل کہاں سے مٹ گیا، حق کہاں سے آ گیا؟ یہ اشارے تھے کہ آپ کی ہجرت مدینہ کی طرف جو ہوئی، یہ آپ کے لیے ایک نیا راستہ کھل گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کو نافذ کرنے کے لیے غلبے کی ضرورت ہے، جس کو یہاں سلطان کہا گیا۔ کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی نے مکہ سے نکل کر مدینہ کو کیسے آباد کیا؟ آج میرے آپ کے لیے اس میں بہت بڑی گائیڈ لائن ہے۔ سب سے پہلی چیز جو آپ کو کسی بھی جگہ دین کو نافذ کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے نا، وہ غیر مشروط اطاعت کرنے والے لوگ، کہ جو آپ کی بات پر یقین کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی صورت میں ایسا ملا۔ یہ نہیں ہے کہ 30 سے 40 راتیں کر دی موسیٰ نے تو پیچھے بدگمان ہو گئے۔ ذرا آپ نبی کے صحابہ اور حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کا تقابل کر کے دیکھیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ حضرت موسیٰ سے بدگمان ہو جاتے تھے۔ 30 راتوں میں نہ آئے، کہا موسیٰ تو گم گئے، موسیٰ تو چلے گئے، چلو اب کوئی اور خدا بنا لو۔ اور ادھر کہا کہ ذرا لڑیے قوم مالکہ سے، کہا تو لڑ، وانت و ربو کا فقاتل انہا ہونا قائدون۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے ایسے پیارے ساتھی دیے، ہر میدان میں کود پڑے، ہر محاذ پہ چل پڑے، وقت لگایا، مال لگایا، جان لگائی۔ وہ گن گن کے نیکیاں نہیں کرتے تھے کہ پچھلی نیکی ہم نے کیا، اب اگلی کیوں کریں۔ انہوں نے اپنے آپ کو واقعی ثابت کیا، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں نا کہ انڈر کمٹ اوور کمٹ، کم کمٹمنٹ کر کے زیادہ دینے والے لوگ تھے صحابہ کرام۔ یہ غلبہ درکار ہے۔ آج بھی میرے آپ کے بات کرنے سے بات نہیں بنے گی، آج بھی امت کا حال کب بدلے گا جب ہمیں اس طریقے سے اللہ کے راستوں میں تڑپنے کا فکر لگ جائے، آگے کا سوچنے والے، کیا ہوگا، خواب دیکھنے والے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر پیچھے رہ جائیں۔ آپ امیجن تو کریں، اس وقت میرا دل کر رہا ہے کہ صحابہ کو خراج تحسین پیش کیا جائے، زندگی کے بڑے بڑے مرحلے ان کے آئے، لیکن وہ چلتے ہی گئے۔ ہجرت کرنی پڑی، کی قربانی دینی پڑی، کی دی، جہاد پہ جانا پڑا، جہاد پہ گئے، جنگیں لڑنی پڑی، لڑے، آپ کو ایک جنگ سے نکال کر دوسری جنگ میں ڈال دیا، کچھ تیار ہو گئے۔ یہ ہے سلطان النصیرہ۔ اللہ کے نبی نے اپنے پیارے صحابہ کے ساتھ اس خواب کو شرمندہ تعبیر کیا جو پچھلے ہر نبی نے دیکھا، لیکن پورا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ آج بھی دین کو ایسے ہی لوگ چاہیے، کمٹمنٹ کر کے نبھانے والے۔ تھوڑی کمٹمنٹ کی، نبھایا زیادہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قربانی نہیں۔ آپ دیکھیے، بارش ہو گئی، نہیں آئیں گے، نمک سے بنے ہیں، پگھل جائیں گے، برف سے بنے ہیں۔ مہمان آ گئے، نہیں آئیں گے، یہ ہو گیا، نہیں کریں گے۔ یہ وجہ کہ آج امت نہیں ابھر رہی۔ ٹیلنٹ آج بھی بہت ہے، लेकिन जान देने से ज़्यादा जान बचाने वाले दिखते हैं। आज मुझे आपको वाकई इस बात का सोचना है कि अगर मैंने अपनी जान ना भी लगाई आज अल्लाह के लिए, तो घुल तो रही है। हर एक साल आपकी ज़िंदगी में कमज़ोरी नहीं ला रहा। किस उम्र में हमारा कौन सा हिस्सा बूढ़ा होना शुरू होता है? आपकी आंखें, आपका जिस्म, पूरा जिस्म कब किस उम्र में बूढ़ा होता है, आज साइंस ने ये सब कुछ दिखाया है। और पिछले सालों में हमने एक साल जब अल इंसान का किया था मौजू, तो उस दिन वो सारे प्रेजेंटेशन दिखाए थे, उसमें से वो एक था। तो मैं सोच रही थी कि वाकई हम सब ने जाना तो है ही है ना, बीमारियाँ भी लगी जानी है एंड पे, अल्लाह ना वैसे लगाए कभी आखिरी दिन तक। तो फिर आज घुल जाएंगे तो क्या होगा? याद रखिए, जाल हक व जाहकल बातिल, ये कब होगा? जब हम जागेंगे। सोई हुई उम्मत आज उठ जाए, करें क्या? आगाज़ है इल्म हासिल करने से, और माशाल्लाह वो हो गया। जब उम्मत इल्म हासिल करने लग जाती है, अपने बच्चों की फिक्रें लग जाती हैं, इरादे बनने लगते हैं, फिर नेकियों के रास्ते खुलते हैं, फिर ऐसा ऐसा अल्लाह जगह भी बना देता है, इंस्टीट्यूट भी बन जाते हैं, इदारे भी बनते हैं। लेकिन सबसे कीमती चीज़ वो गिरोह जो हर घड़ी, हर वो कहते हैं ना, हर घड़ी तैयार, कामरान कामरान। क्या वही कौम नभेगी जो हर तरह की मुश्किलात से गुजरती है? अल्लाह ताला मुझे आपको इस चीज़ पर अमल करने वाला बना दे। अब चंद बातें कुरान की, क्योंकि आप देखेंगे जहाँ भी स्ट्रगल की बात होगी ना, उसके फौरन बाद कुरान का जिक्र आ जाएगा। वनुनस्सिलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन। हम इस कुरान को नाजिल करने के सिलसिले में जो कुछ नाजिल कर रहे हैं, जो मानने वालों के लिए तो शिफा और रहमत है, मगर जालिमों के लिए खसारे के सिवा और किसी चीज़ में इजाफा नहीं करता। इंसान का हाल ये है कि जब हम इसको नेमत अता करते हैं तो वो ईंटता और पीठ मोड़ लेता है। ऐसे लगता है अब उसको अल्लाह की ज़रूरत ही नहीं, काम बन गया। और जब ज़रा मुसीबत से दो चार होता है तो मायूस होने लगता है। ऐ नबी, इन लोगों से कह दीजिए कि हर एक अपने अपने तरीके पर अमल कर रहा है, अब ये तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है कि सीधी राह पर कौन है। क्या आपको मुझे नहीं पता कौन सीधी राह पे? जो कुरान सुन्नत पे। आपके अच्छा फिर पता नहीं कौन ठीक है कौन गलत पे? सबको पता है, जिसको पता है कि वो कुरान सुन्नत पे, वो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ठीक रास्ते पे जा रहा है। इसके बाद यहूद ने आपको परखने के लिए कि आप नबी हैं कि नहीं, एक सवाल किया था, तीन सवाल थे, उसमें से एक सवाल किया था कि रूह क्या होती है। ये जो आज भी हर दौर में लोग कहते हैं स्पिरिट्स क्या होती हैं, और रूहें आती रूहें जाती बदरूहें, और इस तरह की कुछ लोग बातें करते हैं, तो उसका सवाल का जवाब इधर है। बाकी दो सवालों के जवाब सूरत कहफ में आएंगे। सवाल क्या था? वयसलूनका अनिर रूह, और वो आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, कहो ये रूह मेरे रब के हुक्म से आती है। रूह तीन तरह से इस्तेमाल हुआ है कुरान में, ये लफ्ज़ तीनों लफ्ज़ मौजूद हैं कुरान में। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का लकब था रूहुल अमीन, क्योंकि वही बच्चों में रूह डालते हैं। इसी तरह वही को रूह कहते हैं, यानी कुरान की वही जो उतरती थी, क्योंकि वो भी जिब्राइल के साथ भी आती थी, और ये जिस्म में रूह बन जाती है। और तीसरी वो रूह है जो आपके मेरे जिस्म में, जो निकलती है तो मौत है, जब आती है तो ज़िंदगी बनती है। तीनों चीज़ें अल्लाह के हुक्म से आती हैं। जिब्राइल भी अल्लाह के हुक्म से आते थे, वही भी अल्लाह के हुक्म से आती थी, और आज भी वही बच्चा ज़िंदा बचता है जिसको अल्लाह ज़िंदा रखना चाहते हैं। फरमाए, मगर तुम लोगों ने इसमें से बहुत थोड़ा इल्म पाया है, यानी इस बारे में इल्म कम है, और इस पे बहस नहीं करनी चाहिए। और ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम चाहें तो वो सब कुछ आपसे छीन ले जो हमने वही के ज़रिए से आपको दिया है। अल्लाह अकबर, सुन के दिल बैठ जाता है। ये 15 पारे जो पढ़े हैं ये सब भुला दें, यानी कितनी ज़बरदस्त आयत है। आप सोचें, आप में से कोई हाफिज़ हो अगर, और अल्लाह उसको कह दे जो तुम्हें दिया हुआ है ना सब तुम्हारे सीने से निकाल सकता हूँ, आपने लफ्ज़ी तर्जमे याद किए हुए हैं, अल्लाह कहते सब भुला दूंगा, तजवीद के रूल्स सब भुला दूंगा, कितनी ज़बरदस्त बात है। यानी अल्लाह अपनी कुदरत बता रहे हैं कि कोई अपने इल्म और अपनी अकल पे फ़ख्र ना करे, अल्लाह चाहे तो एक मिनट में भुला दे तुमको जो अता किया है, फिर तुम हमारे मुकाबले में कोई हिमायती ना पाओगे जो इसे वापस ला सके। ये तो जो कुछ तुम्हें मिला है तुम्हारे रब की रहमत से मिला है। आप भी कहिए, अल्लाह मुझे जो भी मिल रहा है ना, मुझे रब तेरी रहमत से मिल रहा है। किसी इंसान की ताकत नहीं है कि वो कोई खूबी अपने अंदर ला सके, तो आजिज़ी की ज़रूरत है। हकीकत यह है कि इसका फ़ज़ल तुम पर बहुत बड़ा है। कह दो कि अगर इंसान और जिन सब के सब मिलकर इस कुरान जैसी कोई चीज़ लाने की कोशिश करें तो ना ला सकेंगे। इतनी यूनिक किताब पढ़ रहे हैं आप, कोई चेंज ही नहीं कर सकता, कोई ला नहीं सकता ऐसी किताब। इंसान तो इंसान, जिन भी नहीं ला सकते, चाहे वो सब एक दूसरे के मददगार ही क्यों ना हो। इस मोहब्बत से ज़रा अपने कुरान को छुएं, प्यार किया करें इसके साथ। वलकद सर्रफ़ना लिन्नासिफ़ी हाज़िल कुरआनि मिन कुल्ली मसल, हमने इस कुरान में लोगों को तरह तरह से समझाया, मगर अक्सर लोग इनकार पर ही जमे रहे और उन्होंने काम तेरी बात मान के ना देंगे। अब ये उस स्टबन लोगों के किस्से हैं जो मक्का में बार बार मुतालबे करते थे मौजजात के। फरमाए, जब तक कि तू हमारे लिए ज़मीन को फाड़ कर एक चश्मा ना जारी कर दे, या तेरे लिए खजूरों और अंगूरों का एक बाग पैदा हो और तू इसमें नहरें रवान कर दे, या तो आसमान को टुकड़े टुकड़े करके हमारे ऊपर गिरा दे जैसा कि तेरा दावा है। देखिए कितने ना समझ हैं, कहते हैं ये आसमान फटे और हम गिरे, हम पे गिरे, जैसे कोई कहे ये छत गिरे और हम सारे इसके नीचे मर जाए। तासुब, देखिए उनको अल्लाह के नबी की सच्चाई का यकीन ही नहीं था, वरना कभी ये बात ना करते। औता दिया बिल्लाहि वल मलाइकति कबीला, या खुदा और फरिश्तों को हमारे रूबरू करके सामने ले आए, या तेरे लिए सोने का एक घर बन जाए, या तो आसमान पर चढ़ जाए और तेरे चढ़ने का भी हम ज़रा यकीन ना करें, जब तक कि तू हमारे ऊपर एक ऐसी तहरीर ना उतार लाए जिसे हम पढ़ें। इससे भी ज़्यादा किसी का स्टबन एटीट्यूड होगा कुरान के मामले में? कोई मुंह पे आके आपको कि तुम जो मर्जी कोशिश कर लो मैं नहीं कुरान सुनूंगी, ये अंदाज़ है, मैं नहीं पढ़ूंगा जो मर्जी कर लो, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ने क्यों पढ़ाना था? फिर तभी तो ये मार दिए गए, बदर के कुएं में डाल दिए गए इनमें से अक्सर लोग। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, पाक है मेरा रब, क्या मैं एक पैगाम लाने वाले इंसान के सिवा और भी कुछ हूँ? बस यही आपको मुझे समझना है अपने लिए, मेरी आपकी औकात बस इतनी है, तड़पना, दुआ करना, पुकारना, बताना, पीछे नहीं पड़ना लोगों के। जिसके नसीब में होगा अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खुद ब खुद खोल देगा। क्यों नहीं लोग मानते? इसका जवाब अगली आयत में देखिएगा, आयत 94। लोगों के सामने जब कभी हिदायत आई, हमारे भी सामने आई हुई है ना, तो क्या हुआ? तो इस पर ईमान लाने से इनको उस चीज़ ने नहीं रोका मगर इनके इसी कौल ने कि क्या अल्लाह ने बशर को पैगंबर बनाकर भेज दिया, यानी बात करने वाले की ज़ात में खो गए कि ये बशर है इसलिए नहीं मानेंगे, फरिश्ता होता तो मान जाते, कोई गुनाहों से पाक होता तो मान जाते। इनसे कहो, अगर ज़मीन में फरिश्ते इत्मीनान से चल फिर रहे होते तो हम ज़रूर आसमान से किसी फरिश्ते को ही इनके लिए पैगंबर बनाकर भेज देते। ज़ाहिर है कि इंसानों में इंसान नबी चाहिए था, फरिश्ते होते तो फरिश्ता नबी आता। कुल कफ़ा बिल्लाह शहीदम बैनी व बैनकुम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दो, मेरे और तुम्हारे दरमियान बस एक अल्लाह की गवाही काफ़ी है, वो अपने बंदों के हाल से बाखबर है और वो सब कुछ देख रहा है। बात यह है, इसको हाईलाइट कीजिएगा, वमन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, और जिसे अल्लाह हिदायत दे बस वही हिदायत पाने वाला है। इज़ इट ट्रू? तो आप अल्लाह से हिदायत मांगे अपने भी लिए, अपनी औलादों के लिए, अपने प्यारों के लिए, और जिसे वो गुमराही में डाल दे तो इसके सिवा ऐसे लोगों के लिए तो कोई हामी और मददगार ना पा सकेगा। इन लोगों को हम क़यामत के रोज़ ऊंधे मुँह खींच लाएंगे, अंधे गूंगे और बहरे, इनका ठिकाना जहन्नुम है। क्यों? क्योंकि दुनिया में अल्लाह की किताब से गूंगे बहरे बने हुए थे। जब कभी इसकी आग धीमी धीमी होने लगेगी हम इसे और भड़का देंगे ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। ये बदला है इनकी इस हरकत का। क्या हरकत थी इनकी? कि इन्होंने हमारी आयतों के साथ जो सलूक किया, अस्तग़फिरुल्लाह, कितनी बड़ी पकड़ है कि हमारी आयतों का ये इनकार करते और कहा कि क्या जब हम सिर्फ हड्डियां और खाक होकर रह जाएंगे तो क्या नए सिरे से हमको पैदा करके उठाया जाएगा? क्या इनको ये ना सूझा कि जिस अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया वो इन जासों को पैदा करने की ज़रूर कुदरत रखता है? इसने इनके हशर के लिए एक दिन मुकर्रर कर रखा है जिसका आना यकीनी है, मगर ज़ालिमों को इसरार है कि वो इसका इनकार ही करेंगे। कहते थे जब हम इतना जो है नबी तुझे छुटलाते हैं तो फिर हम पे पकड़ क्यों नहीं आती? तो उसका जवाब है कि अल्लाह ने वक्त रखा हुआ है, वरना तो कब का तुमको पकड़ लिया होता। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहिए, अगर कहीं मेरी रब की रहमत के ख़जाने तुम्हारे कब्ज़े में होते तो तुम खर्च हो जाने के अंदेशे से ज़रूर इनको रोक रखते। वाकई इंसान बड़ा तंग दिल वाक़ हुआ है। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को नौ निशानियाँ ताकि जो सरीख तौर पर दिखाई दे रही थी। अब ये तुम खुद ही बनी इसराइल से पूछ लो कि जब वो इनके सामने आई तो फिरौन ने यही कहा था ना कि ऐ मूसा, मैं समझता हूँ कि तू एक सहर ज़दा शख्स है। मूसा ने इसके जवाब में कहा, तू खूब जानता है कि ये बसीरत अफरोज़ निशानियाँ रब्बुस समावाती वल अर्द के सिवा किसी ने नाजिल नहीं की। कैसे देखिए मुंह पे आके कह रहे हैं कि आप तो जादू किए हुए हैं। और मेरा ख्याल यह कि ऐ फिरौन, तू तो ज़रूर एक शामत ज़दा आदमी है। आखिरकार फिरौन ने इरादा किया कि मूसा बनी इसराइल को ज़मीन से उखाड़ फेंके। क्या इरादा था फिरौन का? और देखिए अल्लाह ने उसके साथ क्या किया। मगर हमने इसको और इसके साथियों को इकट्ठे ही गर्क कर दिया। वो कहते हैं ना, जो किसी के लिए खड़ा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। अल्लाह ने इसके साथ ऐसा इंतकाम लिया کہ وہ اپنے ساتھیوں کے سمیت خود ہی پانی کے اندر پہنچ گیا. کس طرح پہنچا؟ فرمایا اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو, پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم ضرور تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے. یہ قیامت کے قریب جو ہونا ہے نا, اس کی پیشن گوئی ہے. سب بنی اسرائیل زمین کے ایک ٹکڑے پہ جمع ہو رہے ہیں, وہیں ان کا حشر ہوگا, وہیں ان کی پکڑ آئے گی. اسی کی طرف اشارہ ہے. سورت کے شروع میں بھی بنی اسرائیل کا ذکر ہے, اب آخری آیتوں میں بھی یہی تذکرہ ہے. اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے, اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اس کو بشارت دے دو. آپ کے لیے خوشخبری ہے ماننے والوں کے لیے, اور جو نہ مانے اس کو آگاہ کر دو, وارن کر دو. اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ, اور ہم نے اسے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ 23 سال کیوں لگے تھے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے, تو اس کا جواب ہے, جیسے آپ دیکھیے کہ بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے نا, پھر بڑا ہوتا ہے نا, تبھی تو کام کرتا ہے. اگر اتنا بڑا انسان پیدا کیا جاتا تو ماں کا کیا حال ہوتا, اور کتنا ناممکن ہوتا یہ کام. اللہ نے انسان کو وحی کا بوجھ ایک دم نہیں دیا, تھوڑا تھوڑا پڑھتے پڑھتے عمل آنے لگتا ہے. اگر آج پہلی دفعہ سن رہے ہیں کچھ بات سمجھ آ رہی ہے, دوبارہ سنیں گے اور سمجھ آئیں گی, کچھ عمل بدلے گا. ایک وقت آئے گا آپ ان سے بھی اچھے ہو جائیں گے جو آپ کو بتانے والے ہیں. یہی زندگی کا اصول ہے, تدریج رکھو, گریجویلٹی رکھو. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو, کوئی فرق نہیں پڑتا. تم اس کو مان لو یا نہ مان لو. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلا علیہم یخرون للاذقان سجدا. وہ لوگ جن کو ان سے پہلے علم دیا گیا, جب ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں, پاک ہے ہمارا رب, اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا, اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں, اور اسے سن کر ان کا خشوع بڑھ جاتا ہے. کیا ہمارا بھی خشوع بڑھتا ہے؟ کیا میرا آپ کا خشوع بڑھتا ہے اس قرآن کو سن کر پڑھ کر؟ ہم تو پتہ نہیں اس وقت بھی کچھ اور ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. دعا کیجئے کہ قرآن پڑھیں اور سنیں تو ہماری آنکھیں نم ہو جائیں, ہمیں پڑھنا آ جائے, سننا آ جائے. اے نبی ان سے کہو, اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر, جس نام سے بھی پکارو, ان کے لیے سب اچھے نام ہیں. اور اپنی نماز نہ بہت بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے. تہجد پڑھنے کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے. ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کرو, یعنی اتنا بھی نہ اونچا پڑھو کہ سونے والے جاگ جائیں, اور اتنا بھی نہ آہستہ پڑھو کہ خود کو نیند آنے لگے. اور کہو, تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ کوئی اس کی بادشاہی میں اس کا شریک ہے, اور وہ نہ وہ عاجز ہے کہ اس کا کوئی پشتبان ہو. اور اس کی بڑائی بیان کرو, کمال درجے کی بڑائی. سورت کا آغاز کس چیز سے ہوا تھا؟ سبحان اللہ سے. آخر میں دیکھیے گا, کبر ہو تکبیرہ, اللہ اکبر. اور سورت کہف شروع ہوگی الحمدللہ سے. یہ ہے قرآن کی خوبصورتیاں. تلاوت سنتے ہیں یہ آخری آیتوں کی, اور واقعی اس کو اپنے اندر جذب کریں گے انشاءاللہ.
قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبُكُونَ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبُكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
اللہ تعالی ہمیں بھی بہترین طریقے سے پڑھنے والا بنا دے اور ہم اس پہ غور و فکر کر سکیں.